एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम इतिहास के पन्नों में एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व की गहराई में उतरेंगे जिनका नाम सुनते ही मतलब रणनीति, राजनीति और एक तीक्ष्ण बुद्धि का ख्याल आता है। चाणक्य।
हाँ, चाणक्य। उन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं।
बिल्कुल, और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये प्राचीन भारत की सोच और शक्ति के एक तरह से प्रतीक बन गए हैं।
सही कहा। चाणक्य महज एक दार्शनिक या कहिए अर्थशास्त्री नहीं थे, वो तो एक किंग मेकर थे, एक ऐसे रणनीतिकार जिन्होंने भारत के पहले एकीकृत साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में आप कह सकते हैं निर्णायक भूमिका निभाई। उनका समय लगभग 350 से 275 ईसा पूर्व, या कुछ लोग मानते हैं 375 से 283 ईसा पूर्व। देखिए, तिथियों पर थोड़ी बहस तो है, लेकिन हाँ, ये वो दौर था जब भारत ना एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था।
तो आज हम इन्हीं चाणक्य के विचारों की दुनिया में कह सकते गोता लगाएंगे, है ना? हमारे पास जो भी स्रोत हैं उनके आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चाणक्य के सोच में ऐसा क्या खास था कि मतलब हजारों साल बाद भी, आज के दौर में भी, उनके सिद्धांत इतने प्रासंगिक क्यों लगते हैं? क्या वो सिर्फ इतिहास का हिस्सा है या आज भी हमें कुछ सिखा सकते हैं?
यही यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। चाणक्य की महानता सिर्फ उनके विचारों में नहीं है, बल्कि उनके विचारों के व्यवहारिक प्रभाव में है। मतलब उन्होंने सिर्फ सिद्धांत नहीं गढ़े,
हाँ,
बल्कि उन सिद्धांतों के बल पर जमीन पर एक साम्राज्य खड़ा करने में मदद की। उनकी सोच सिर्फ किताबों से निकलकर इतिहास का हिस्सा बन गई। वो सिर्फ विचारक नहीं थे, बल्कि शक्ति के व्यवहारिक वास्तुकार थे। और सोचिए, उनका उदय हुआ किस समय में? भारत का जो पश्चिमोत्तर हिस्सा था, वो सिकंदर के आक्रमण के बाद लगभग 326-325 ईसा पूर्व की बात है, राजनीतिक अस्थिरता झेल रहा था।
अच्छा।
और पूर्व में मगध का शक्तिशाली नंद वंश, वो अपने पतन की ओर था। मतलब हर तरफ एक उथल पुथल का माहौल था।
यानी एक तरफ तो राजनीतिक बिखराव था और दूसरी तरफ विचारों का भी मंथन चल रहा होगा शायद उस समय।
हाँ हाँ, बिल्कुल। वो बौद्धिक रूप से भी एक असाधारण, मतलब उर्वर समय था। देखिए, वेद और उपनिषदों की प्राचीन परंपरा तो थी ही,
हाँ,
साथ ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे नए दर्शन भी समाज में अपनी जगह बना रहे थे। और तो और, लोकायत जैसे भौतिकवादी विचार भी मौजूद थे।
अच्छा।
समाज में धर्म यानी कर्तव्य और नैतिकता, अर्थ यानी भौतिक समृद्धि और उद्देश्य, और दंड यानी शासन और व्यवस्था, इन सब पर जोरदार बहसें चल रही थी। एक तरह से कहिए विचारों का महासंगम था। और इसी माहौल में चाणक्य ने अपनी व्यावहारिक और जिसे कहते हैं संश्लिष्ट सोच को आकार दिया। और मजे की बात देखिए, लगभग उसी समय हजारों मील दूर यूनान में अरस्तु वो पॉलिटिक्स जैसा ग्रंथ लिख रहे थे।
एक विशाल साम्राज्य की नींव रखने की सोच रहे हैं। इस माहौल ने यकीनन उनकी सोच को बहुत पैना बनाया होगा।
हाँ, बिल्कुल।
उनके शुरुआती जीवन के बारे में हम क्या जानते हैं? मगध के ब्राह्मण परिवार से थे तो पता है।
हाँ, जन्म मगध में एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन उनकी जो शिक्षा हुई वो हुई तक्षशिला में। आज के पाकिस्तान में है वो जगह,
तक्षशिला। हाँ, सुना है, बहुत बड़ा केंद्र था शायद उस समय।
अरे, तक्षशिला उस जमाने का ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड समझिए, ज्ञान विज्ञान का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र था।
अच्छा, और तक्षशिला में उन्हें किस तरह की शिक्षा मिली होगी? मतलब क्या क्या सीखा उन्होंने?
देखिए, वहाँ उन्होंने वेद, दर्शन, अर्थशास्त्र, सैन्य रणनीति और खास तौर पर राजनीति, मतलब राज्य चलाने की कला, इसका गहन अध्ययन किया। और तक्षशिला सिर्फ किताबी ज्ञान का केंद्र नहीं था, वो विभिन्न संस्कृतियों और व्यापार मार्गों का चौराहा भी था। तो इससे उन्हें दुनिया की एक प्रैक्टिकल समझ मिली होगी, है ना, जो बाद में उनके यथार्थवादी नजरिए का आधार बनी।
और फिर आता है वो किस्सा जिसने शायद उनके जीवन की दिशा ही बदल दी, वो नंद राजा धनानंद द्वारा दरबार में अपमान वाली बात।
हाँ हाँ।
कहते हैं इस अपमान के बाद उन्होंने अपनी शिखा खोलकर प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक नंद वंश का नाश नहीं कर देंगे तब तक इसे दोबारा नहीं बांधेंगे। क्या गजब का संकल्प रहा होगा
ये कहानी। देखिए, चाहे अक्षर से सच हो या प्रतीकात्मक हो, ये दिखाती है कि कैसे एक व्यक्तिगत अपमान भी एक विराट राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जन्म दे सकता है।
सही बात है।
और इसके बाद ही उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे असाधारण युवा को खोजा। एक कहानी ये भी है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तब पहचाना जब वो बालक था और अपने दोस्तों के साथ राजा राजा का खेल खेल रहा था।
अरे वाह।
चाणक्य ने उस बालक में ही भविष्य का सम्राट देख लिया था। कमाल की नजर थी उनकी।
और फिर गुरु और शिष्य की इस जोड़ी ने तो इतिहास ही रच दिया। चाणक्य की चातुर्य भरी रणनीतियां और चंद्रगुप्त की सैन्य प्रतिभा, इन दोनों ने मिलकर शक्तिशाली नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंका।
बिल्कुल।
और लगभग 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, भारत का पहला एकीकृत साम्राज्य। ये सोचना ही कितना रोमांचक लगता है।
बिल्कुल। और चाणक्य सिर्फ सलाहकार बनकर नहीं रहे, वे चंद्रगुप्त के महामात्य बने, मतलब प्रधानमंत्री या मुख्य सलाहकार समझिए।
हाँ।
उन्होंने सिर्फ सलाह नहीं दी, बल्कि जो नया साम्राज्य बना उसकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सबसे जरूरी एक मजबूत खुफिया तंत्र, उसकी पूरी रूपरेखा उन्होंने तैयार की।
अच्छा।
बाद में उन्होंने चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार के लिए भी सलाहकार का काम किया। तो तक्षशिला और पाटलिपुत्र, जो नंद और मौर्य दोनों की राजधानी रही, ये उनके जीवन के केंद्र बिंदु रहे।
अब आते हैं उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना पर, अर्थशास्त्र। नाम सुनकर तो लगता है जैसे ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की किताब होगी, पर ऐसा है नहीं, है ना?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका शाब्दिक अर्थ भले ही भौतिक लाभ का विज्ञान हो या उद्देश्य का विज्ञान कह लीजिए, लेकिन ये उससे कहीं कहीं ज्यादा व्यापक है। ये राज्य संचालन, राजनीति, कानून, कूटनीति, सैन्य रणनीति, अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, इन सब का एक विस्तृत विश्वकोश है एक तरह से। इसे दुनिया में राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन पर लिखे गए शुरुआती ग्रंथों में गिना जाता है।
यानी एक तरह की किंग्स हैंडबुक, राजा को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब कुछ लिखा इसमें।
हाँ, काफी हद तक। इसमें 15 खंड हैं जिन्हें अधिकरण कहते हैं। इनमें राजा के क्या कर्तव्य हैं, टैक्स कैसे लगाना है, कानून व्यवस्था कैसे बनानी है, जासूसों का नेटवर्क कैसे चलाना है, युद्ध कैसे लड़ना है, मंत्रियों का चुनाव कैसे करना है, मतलब सब कुछ है।
बाप रे।
और इसका जो नजरिया है ना, वो बेहद व्यावहारिक है, यथार्थवादी।
राज्य की सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि,
इसको ये सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।
कभी
कभी तो नैतिक आदर्शों से भी ऊपर।
अच्छा।
और दूसरी कृति है चाणक्य नीति। वो अर्थशास्त्र से कैसे अलग है?
देखिए, जहाँ अर्थशास्त्र एक बहुत विस्तृत गहरा ग्रंथ है, वहीं चाणक्य नीति जो है वो सूक्तियों का, कहावतों का संग्रह है।
अच्छा, जैसे कोट्स होते हैं।
हाँ बिल्कुल। ये अर्थशास्त्र के जो जटिल सिद्धांत है ना, उनको रोजमर्रा की जिंदगी के लिए व्यवहारिक सलाह और नैतिक उपदेशों में बदल देती है। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि ये शायद सीधे चाणक्य ने ना लिखी हों।
अच्छा।
हाँ, मतलब बाद में उनके विचारों के आधार पर संकलित की गई हों, लेकिन इसकी जो आत्मा है वो चाणक्य की यथार्थवादी सोच से ही निकली है। इसमें नैतिकता, ज्ञान, रिश्ते और सफल जीवन जीने के नुस्खे मिलते हैं। और एक बात और, जो अर्थशास्त्र को और भी रहस्यमयी बनाती है, सोचिए राज्य चलाने का इतना डिटेल्ड खाका ये ग्रंथ सदियों तक लुप्तप्राय था। क्या कह रहे हैं?
हाँ, लगभग। इसे 1905 में आर क्षमा शास्त्री ने मैसूर में फिर से खोज निकाला, और इस खोज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को देखने का नजरिया ही बदल गया। ये ऐसा था मानो किसी खोई हुई सभ्यता के शासन का कोई गुप्त मैनुअल मिल गया हो।
वाह, ये तो सच में किसी रोमांचक कहानी जैसा है। अच्छा, अब अगर उनके मूल दार्शनिक विचारों की बात करें, उनके कोर आइडियाज की,
हाँ,
तो उनका सार क्या था?
देखिए, उनका दर्शन मुख्य रूप से यथार्थवाद पर टिका है, रियलिज्म पर। राज्य का पहला लक्ष्य है अपना अस्तित्व बचाना, स्थिर रहना और समृद्ध होना। इसके लिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए।
जैसे?
पहला है सप्तांग सिद्धांत, यानी राज्य के सात अंग।
सात अंग, जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं।
हाँ हाँ, बिल्कुल। उन्होंने राज्य की कल्पना एक जीवित शरीर की तरह की, जिसके सात अनिवार्य हिस्से हैं। स्वामी यानी राजा, अमात्य मंत्री, जनपद, भूमि और प्रजा, दुर्ग, किला, कोष, खजाना, दंड, सेना और मित्र यानी सहयोगी राज्य। उनका मानना था कि अगर इनमें से एक भी अंग कमजोर हुआ तो पूरा राज्य खतरे में पड़ जाएगा। सब एक दूसरे पर निर्भर हैं।
बड़ा दिलचस्प नजरिया है ये तो। और विदेश नीति के लिए भी कुछ था, पड़ोसियों से कैसे निपटना है?
हाँ, उसके लिए था मंडल सिद्धांत। ये एक भू राजनीतिक मॉडल है। इसे ऐसे समझे जैसे तालाब में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती है ना।
हाँ।
तो सबसे करीबी लहर यानी आपका पड़ोसी स्वाभाविक रूप से आपकी चिंता का कारण है। वो आपका संभावित शत्रु अरी है, लेकिन उसके पार की लहर यानी पड़ोसी का पड़ोसी, वो आपका स्वाभाविक मित्र हो सकता है।
अच्छा, क्यों?
क्योंकि आप दोनों का एक साझा पड़ोसी है जो आप दोनों का संभावित शत्रु है। तो ये सिद्धांत बताता है कि किसे दोस्त बनाएं और किससे सावधान रहें। बड़ा प्रैक्टिकल है।
क्या सरल और तार्किक तरीका है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखने का। अद्भुत। और शासन के बारे में उनका क्या कहना था? क्या सिर्फ कठोरता ही थी या कुछ और भी?
उन्होंने एक मजबूत केंद्रीकृत राजतंत्र की वकालत की, जहां धर्म यानी कानून और व्यवस्था का राज हो। लेकिन जैसा मैंने कहा, वे कोरे आदर्शवादी नहीं थे। अर्थशास्त्र में राज्य के दुश्मनों को खत्म करने के लिए जासूसी, प्रोपोगेंडा, गुप्त ऑपरेशन और यहां तक कि राजनीतिक हत्याओं तक का जिक्र मिलता है।
बाप रे, सुनने में तो यह काफी कठोर लगता है। क्या नैतिकता का कोई स्थान ही नहीं था उनके विचारों में?
यहीं पर संतुलन आता है। चाणक्य के अनुसार ये कठोर कदम भी राजा के परम धर्म यानी उसके कर्तव्य से बंधे थे, और वो कर्तव्य था प्रजा का योगक्षेम सुनिश्चित करना।
योगक्षेम मतलब?
मतलब उनकी सुरक्षा और कल्याण। तो ये निरंकुश क्रूरता नहीं थी, बल्कि राज्य और प्रजा की भलाई के बड़े लक्ष्य के तहत अपनाए जाने वाले साधन थे। हालांकि ये संतुलन बनाए रखना कितना मुश्किल रहा होगा।
हाँ, ये यथार्थवाद और नैतिकता के बीच की बड़ी महीन रेखा है। अच्छा, उनकी तुलना अक्सर पश्चिमी विचारकों से होती है, खासकर मैकियावेली से। उन्हें भारतीय मैकियावेली भी कहा जाता है। ये तुलना कितनी सही है?
हाँ, ये तुलना होती है, और इसलिए होती है क्योंकि दोनों ही शक्ति के व्यावहारिक इस्तेमाल पर जोर देते हैं और कभी कभी ऐसे उपाय सुझाते हैं जो नैतिक रूप से मतलब संदिग्ध लग सकते हैं। लेकिन पहली बात तो ये कि चाणक्य मैकियावेली से लगभग 1800 साल पहले हुए थे।
हाँ, ये तो है।
और दूसरी बात, ये तुलना अधूरी है।
अधूरी क्यों?
क्योंकि अर्थशास्त्र का जो दायरा है वो मैकियावेली की द प्रिंस से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसमें सिर्फ राजनीतिक सत्ता हासिल करना और बनाए रखना ही नहीं है, इसमें अर्थव्यवस्था, कानून, समाज, प्रशासन, कूटनीति सब कुछ शामिल है। बहुत व्यापक है ये।
अच्छा।
और साथ ही, जैसा हमने कहा, चाणक्य के यहाँ अंततः सब कुछ राजा के धर्म और प्रजा के योगक्षेम से जुड़ा है। एक नैतिक ढांचा मौजूद है जो मैकियावेली में उतना साफ नहीं दिखता। अरस्तु से भी तुलना होती है क्योंकि दोनों दर्शन और व्यवहार को जोड़ते हैं, पर अरस्तु का फोकस छोटे नगर राज्य थे, चाणक्य का विशाल साम्राज्य। और चीन के सुंतसु से उनकी तुलना सैन्य रणनीति और छल कपट के विश्लेषण के लिए की जा सकती है।
तो भारतीय मैकियावेली कहना शायद उनकी व्यापकता को कम करके आंकना है। खैर, उनकी विरासत आज तक कैसे पहुंची? क्या उनके जाने के बाद भी उनके विचार प्रासंगिक रहे?
हाँ, बिल्कुल रहे। मध्यकाल में भारत के कई राज्यों में अर्थशास्त्र राजाओं और प्रशासकों के लिए एक जरूरी गाइडबुक बनी रही। हालांकि ब्रिटिश राज के दौरान शुरुआत में इसे नजरअंदाज किया गया।
अच्छा।
हाँ, पर 1905 में जब इसकी दोबारा खोज हुई तो इसने इसे विश्व पटल पर स्थापित कर दिया। आज भारत में तो उन्हें एक राष्ट्रीय नायक जैसा सम्मान प्राप्त है। कूटनीति, राजनीतिक कौशल और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं वो।
और आज के आधुनिक दौर में क्या आज भी उनके सिद्धांत काम आते हैं?
हैरानी की बात है। हाँ, आज की कूटनीति, इंटेलिजेंस एजेंसियों के काम करने के तरीके, लोक प्रशासन और यहाँ तक कि कॉर्पोरेट जगत में जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है, उसमें भी चाणक्य के सिद्धांतों की झलक मिलती है। और चाणक्य नीति शब्द तो आम बोलचाल में किसी भी चतुर और असरदार रणनीति के लिए इस्तेमाल होता है ना?
हाँ, ये तो है।
उनका काम हमें शासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का एक गैर पश्चिमी नजरिया देता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
चलिए, उनकी कुछ मशहूर कथनों पर नजर डालते हैं जो आज भी खूब दोहराए जाते हैं। एक है, व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए, सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोग पहले मुसीबत में फंसते हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? थोड़ा कड़वा लगता है सुनने में।
हाँ, ये चाणक्य के कड़वे यथार्थवाद का सटीक उदाहरण है। देखिए, उनका मतलब ये नहीं कि बेईमान बन जाओ, बल्कि ये कि दुनिया हमेशा आदर्शों पर नहीं चलती। जरूरत से ज्यादा सीधापन या भोलापन आपको नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर राजनीति और शक्ति के खेल में। आपको व्यावहारिक होना पड़ेगा, दुनिया को समझना पड़ेगा।
समझी। अच्छा, एक और विचार। कोई भी काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछें। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा? जब गहराई से सोचने पर संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़ें।
ये दूरदर्शिता योजना और सोच समझकर फैसला लेने पर जोर देता है, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या कोई बड़ा राजनीतिक कदम। बिना सोचे समझे कूद पड़ना मूर्खता है। पहले विश्लेषण करो, फिर अमल करो। सिंपल।
बिल्कुल। और ये वाला तो बहुत सुनने में आता है, सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने रहस्य किसी को ना बताएं। यह आपको नष्ट कर देगा।
हाँ, ये सोचना की ताकत और गोपनीयता के महत्व को रेखांकित करता है। खासकर सत्ता और रणनीति के खेल में आपकी जो गुप्त जानकारी है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत या कमजोरी बन सकती है। उसे संभाल कर रखना बहुत जरूरी है।
और वो प्रसिद्ध उक्ति, शत्रु का शत्रु मित्र होता है।
हाँ, ये उनके मंडल सिद्धांत का निचोड़ है, सार है उसका। ये विशुद्ध व्यावहारिक कूटनीति है। जिनके हित आपसे मिलते हों या जिनका दुश्मन वही हो जो आपका है, उनके साथ कटजोड़ करना समझदारी है। इसमें कोई भावना नहीं, सिर्फ रणनीति है।
लेकिन जाहिर है इतने विवादास्पद विचारों की आलोचना भी हुई होगी, क्या कमियां निकाली जाती हैं?
बिल्कुल, सबसे बड़ी आलोचना तो उनके द्वारा सुझाए गए कठोर और कई बार अनैतिक तरीकों को लेकर है, जैसे धोखा, हत्या, अपने ही नागरिकों की व्यापक जासूसी। आलोचक कहते हैं कि ये राज्य के हित में नैतिकता को पूरी तरह कुर्बान कर देता है।
और उनका शासन का मॉडल भी तो पूरी तरह राजशाही और सत्तावादी है। मतलब आज के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनसे तो मेल नहीं खाता।
सही कहा। अर्थशास्त्र में जिस राज्य का वर्णन है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के बजाय राज्य के नियंत्रण पर ज्यादा जोर देता है। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक सवाल भी हैं।
जैसे
कि क्या चाणक्य कोई एक ही व्यक्ति थे या ये एक उपाधि थी? क्या अर्थशास्त्र एक ही व्यक्ति की रचना है या कई पीढ़ियों के ज्ञान का संकलन है जो बाद में उनके नाम से जुड़ गया? इन पर विद्वानों में बहस जारी है।
हाँ, ये भी जरूरी है कि हम उन्हें कैसे याद करते हैं। कभी कभी लोग सिर्फ उनके मैकियावेलियन पहलू पर ध्यान देते हैं और उनके धर्म और योगक्षेम वाले पक्ष को भूल जाते हैं। पूरी तस्वीर देखना महत्वपूर्ण है ना?
निश्चित रूप से। उनके यथार्थवाद को उनके द्वारा दिए गए नैतिक ढांचे के संदर्भ में ही समझना चाहिए, तभी सही मूल्यांकन हो पाएगा।
उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से भी हैं। एक तो वही कि उन्होंने चंद्रगुप्त को बचपन में ही पहचान लिया था। ये उनकी पारखी नजर दिखाता है।
हाँ, और ये भी कहा जाता है कि इतने शक्तिशाली पद पर होते हुए भी वे खुद एक तपस्वी की तरह साधारण सी कुटिया में रहते थे। मतलब सत्ता का मोह नहीं था, कर्तव्य का भाव प्रबल था।
और वो शिखा वाली प्रतिज्ञा तो उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक है ही। एक और कहानी है जहर वाली, वो कितनी सच है, मैंने भी सुनी है।
हाँ, वो कहानी काफी नाटकीय है, हालांकि शायद ऐतिहासिक रूप से पुष्ट ना हो, पर कहानी दिलचस्प है। कहते हैं कि चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त को जहर के असर से बचाने के लिए रोज उनके खाने में जहर की बहुत थोड़ी मात्रा मिलाते थे ताकि उनमें प्रतिरोधक क्षमता बन जाए।
अच्छा।
एक दिन गलती से चंद्रगुप्त की गर्भवती पत्नी रानी दुर्धरा ने वो खाना खा लिया और उनकी मृत्यु हो गई। चाणक्य ने तुरंत रानी का पेट चीरकर बच्चे को बचा लिया, जो बाद में बिंदुसार बने।
ओहो।
कहते हैं जहर की एक बूंद बिंदु बच्चे के माथे पर गिरी थी, इसीलिए नाम पड़ा बिंदुसार। अब ये कहानी सच्ची हो या ना हो, ये दिखाती है कि चाणक्य राज्य की रक्षा और उत्तराधिकार के लिए किस हद तक जा सकते थे। राज्य सर्वोपरि था उनके लिए।
रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है ये तो।
कुल मिलाकर चाणक्य का साधारण व्यक्तित्व थे, इसमें कोई शक नहीं।
निसंदेह
वे दार्शनिक, रणनीतिकार, अर्थशास्त्री और किंगमेकर सब कुछ एक ही व्यक्ति में थे। सिर्फ विचारक नहीं बल्कि इतिहास बदलने वाले कर्ता थे। उनका अर्थशास्त्र शासन कला, अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर एक ऐसा अद्भुत और व्यवहारिक ग्रंथ है जो आज भी प्रासंगिक है और मैकियावेली जैसे पश्चिमी विचारकों से सदियों पुराना है।
तो आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है? देखिए, चाणक्य ने 2500 साल पहले सत्ता, नैतिकता और प्रजा के कल्याण के बीच संतुलन साधने की जटिल पहेली को सुलझाने की कोशिश की। आज की दुनिया भी कम जटिल नहीं है। नेताओं, प्रशासकों या हम सब जो रोजमर्रा की जिंदगी में फैसले लेते हैं, हमारे लिए संतुलन साधना कितना महत्वपूर्ण है। हम चाणक्य के नजरिए से क्या सीख सकते हैं? उनकी ताकत भी और उनके तरीकों में छिपे संभावित खतरे भी, ये सवाल शायद हमेशा प्रासंगिक रहेगा, है ना?
बिल्कुल, ये एक सतत चलने वाली बहस है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।